नमस्कार भारत, 15 जुलाई रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। इसराइल ने उत्तरी गजा में हमास के ठिकानों पर किए हवाई हमले। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जेल जाने के बाद उनकी पार्टी में फूट की आशंका।
बुनियादी तौर पे जो जमात है उसके अंदर एक वाज़े तकसीम की बात सुनाई दे रही है।
राहुल गांधी पर टिप्पणी करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने बोला तीखा हमला।
इतने खिसियाए हुए हमारे प्रधानमंत्री हो गए हैं कि वो फेक न्यूज स्टोरीज की बुनियाद पे विपक्षी दलों पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं।
होगी अखबारों की समीक्षा और खबरें और भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत कौर से। गजा में फलिस्तीनी चरमपंथियों और इजराइल के सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी की खबर है। इससे पहले फलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास ने कहा था कि वो और इजराइल युद्ध विराम समझौते को लेकर राजी हुए हैं। इजराइल ने शनिवार को 90 से ज्यादा रॉकेट हमलों के जवाब में उत्तरी गजा में हमास के दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। 2014 के बाद से अब तक हमास पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आम लोग भी इन हमलों की चपेट में आए हैं। फलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग जख्मी हुए हैं। फ्रांस और इटली से लगने वाले वेंटमिग्लिया शहर में हजारों लोगों ने प्रवासियों के लिए कड़े किए जा रहे नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किए। रैली का आयोजन करने वाले प्रवासी सहायता समूह ने कहा कि वो हाल ही में घोषित की गई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की निंदा करते हैं। इटली की नई सरकार ने प्रवासियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और उनसे भरी नाव को अपने बंदरगाहों पर भी नहीं आने दे रही। यूरोपीय संघ पर भी नियमों को कड़ा करने का दबाव है। हाल ही में इटली ने 400 प्रवासियों से भरी नाव को आने से रोक दिया था और कहा था कि माल्टा से इन प्रवासियों को लेना चाहिए। इस विवाद पर इटली के लिए माल्टा के राजदूत ने कहा है कि उनका देश प्रवासियों को लेकर बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा। उन्होंने कहा, माल्टा ने हमेशा एकजुटता दिखाई है, लेकिन माल्टा ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक काम किया है। हमने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन हम इटली की सरकार की किसी अपील या मांग पर प्रवासियों को शरण नहीं दे सकते। हम किसी देश की मर्जी के हिसाब से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से कदम उठाते हैं। ये थे इटली के लिए माल्टा के राजदूत के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एक बड़ा हिमखंड ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के करीब बसे एक छोटे गांव के पास पहुंच गया है। डर है कि इसके टूटने से गांव में सुनामी आ सकती है। वहां रहने वाले 170 लोगों को गांव से बाहर निकाल लिया गया है। डेनिश मौसम विज्ञान संस्था के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि हवा और समुद्र की लहरों की वजह से हिमखंड अगले कुछ दिनों में गाँव से दूर खिसक जाएगा, लेकिन उन्होंने एहतियात बरतने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, इस आकार के हिमखंड खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इस इलाके में इस आकार के हिमखंड होना आम बात है, लेकिन खतरे की बात यह है कि इतना बड़ा हिमखंड एक गांव के पास पहुंच गया है। ये है मौसम विज्ञान संस्थान के एक वरिष्ठ सलाहकार के शब्द। निकारागुआ में सरकार विरोधी प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी कारों और मोटरबाइकों पर नारे लगाते हुए राजधानी मानागुआ की सड़कों पर परेड कर रहे हैं। देश के दूसरे शहरों में भी मार्च निकाले जा रहे हैं। शुक्रवार को दो युवा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों ने चर्च के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। इन दोनों ने सुरक्षा बलों के हमले से बचने के लिए चर्च में शरण ली थी। अप्रैल से अब तक सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने ब्रेग्जिट रणनीति से नाराज अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को चेतावनी दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। इसराइल ने दावा किया है कि गजा की ओर से 90 रॉकेट दागे जाने के बाद प्रतिक्रिया में उसने हमास के कुछ सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इसराइल के ये हवाई हमले हमास के साथ उसके 2014 में हुए संघर्ष के बाद से लेकर अब तक के सबसे बड़े हमले माने जा रहे हैं। वहां के हालात को लेकर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रही हैं गुरप्रीत कौर।
धमाके और चीख पुकार की ये आवाजें उत्तरी गजा से आई हैं। इसराइल ने कहा है कि 90 से ज्यादा रॉकेट हमलों के जवाब में उसने हमास चरमपंथियों के दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। 2014 के बाद से अब तक हमास पर इसराइल का ये सबसे बड़ा हमला है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इजरायली हमलों का निशाना गजा शहर की एक खाली इमारत बनी, जिसके पास से गुजर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 12 जख्मी हुए हैं। हमले में घायल एक फिलिस्तीनी ने बताया, 3 धमाके हुए। धमाकों के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी बांह पर आकर कुछ लगा। मैंने अपनी बांह को देखा तो उसमें से खून निकल रहा था। इसके बाद मैं अस्पताल पहुंचा। ये थे हमलों में घायल एक फिलिस्तीनी के शब्द। हालांकि इसराइल का कहना है कि उसने ये हमले हमास चरमपंथियों के हमलों के जवाब में किए हैं। इसराइल का आरोप है कि हमास के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र से इसराइल में दर्जनों मोर्टार और रॉकेट दागे गए थे। इसराइल में 90 से ज्यादा रॉकेट गिरने की रिपोर्ट है। एक रॉकेट एक घर पर जा गिरा जिससे 3 लोग जख्मी हो गए। इसराइली सेना का कहना है कि उसने इन हमलों के जवाब में हमास बटालियन के मुख्यालय और हमास के ट्रेनिंग केंद्रों को निशाना बनाया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी रह सकता है। उन्होंने कहा, इसराइल के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से सलाह मशविरा करने के बाद हमने हमास चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। इसराइल की सेना ने 2014 के बाद से अब तक के सबसे बड़े अभियान को अंजाम दिया। जरूरत पड़ने पर हम ये हमले और तेज करेंगे। ये थे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। ये हमले उस समय हुए हैं जब पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। सीमा पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और फिलिस्तीनी मांग कर रहे हैं कि उन्हें इसराइल में मौजूद उनके पुश्तैनी घरों को लौटने का अधिकार दिया जाए। वो गजा पर इसराइल और मिस्र की ओर से की गई नाकेबंदी को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। इसराइल और मिस्र का कहना है कि लड़ाकों से बचने के लिए नाकेबंदी करना जरूरी है। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनों के दौरान इजरायली सेना के हाथों 130 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 15,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि ताज़ा हमलों के बाद फलस्तीन के अधिकारियों ने कहा है कि इसराइल और गजा के चरमपंथी समूहों ने संघर्ष विराम समझौते को लेकर सहमति जताई है।
चरमपंथी संगठन हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इसराइली बलों के साथ शांति समझौता हो गया है, मगर इसराइल का ये कहना था कि वो जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद अपना रुख तय करेगा। मगर ताज़ा समाचार ये हैं कि समझौते के बाद भी हमास के लड़ाकों और इसराइली बलों के बीच में अभी भी फायरिंग हो रही है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ को रावलपिंडी की अडियाला जेल भेज दिया गया। कल मरियम शरीफ के हस्ताक्षर वाला एक पत्र भी सामने आया जिसमें कथित तौर पर उन्होंने जेल में मिलने वाली सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया। इस बीच नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ कल मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी पार्टी PMLN के प्रदर्शन को मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया, यानी जानबूझकर उस प्रदर्शन का प्रसारण नहीं किया गया जिसमें लोग नवाज शरीफ और उनकी बेटी को जेल भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। सुनिए क्या कहा शहबाज शरीफ ने।
कल पाकिस्तान के मेहमानों ने ये जुलूस निकाला और तमाम चैनल्स ने ऑलमोस्ट इसको बायकॉट किया, तो फिर मैं इसका क्या मतलब निकालूं कि अमन, सुकून, तरक्की, खुशहाली के प्रोग्रामों को उनके ऊपर जो यकीन दहानियाँ कराई गई और फिर वो अमली तौर पर उसका मुजाहरा किया गया, उसको मुकम्मल ब्लैकआउट। इस वक्त نشانے پر صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے، ہمارے ورکرز ہیں۔
نواز شریف کے بھائی شہباز نے یہ بھی کہا کہ ان کی پارٹی کے کارکرتاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ایسی بھی خبریں آئیں کہ نواز شریف کی گرفتاری کے ورودھ میں بڑے استر پر پردرشن نہ ہونے کے کارن ان کی پارٹی دو حصوں میں بنٹ گئی ہے۔ ان حالات میں جبکہ نواز جیل میں ہیں، کیا ان کی پارٹی پی ایم ایل این میں پھوٹ پڑ گئی ہے؟ ہمارے سہیوگی نے محمد شاہد نے یہی جاننے کے لیے بات کی بی بی سی اردو کے سنواداتا طاہر عمران سے۔
بیسکلی جو پاکستان کے اندر کل جو لاہور کے اندر صورتحال تھی، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے رہنما مل کے بیٹھے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو جماعت ہے اس کے اندر جو ایک واضح تقسیم کی بات سنائی دے رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جو شہباز شریف کی لیڈرشپ ہے، اس نے اتنے اگریسو طریقے سے جو نواز شریف کی آمد کے استقبال کے لیے جو تیاریاں وغیرہ تھیں یا جو سزا کے بعد کا سٹانس تھا اس کو اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے پارٹی کے اندر تنقید ہو رہی ہے۔ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے پارٹی کے ایک سینئر رہنما سے بات ہو رہی تھی جو نواز شریف کے ساتھ وزیر کے طور پہ کام کرتے رہے، اور انہوں نے بتایا کہ جب میں نے ان کے سامنے رکھا کہ مجھے نون لیگ کے کارکن نے کہا کہ میاں شہباز شریف جو ہیں چھوٹے میاں ہیں جن کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جانشینی کا حق نہیں ادا کیا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ چھوٹے میاں کو بڑے ہو جانا چاہیے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ دوسری جانب شہباز شریف سے یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت تھی وہ تو انہوں نے کیا، لیکن لوگوں کو انہوں نے اس طرح تیار نہیں کیا کہ وہ ایئرپورٹ پر جا کے یا انتظامیہ کے سامنے ایک سٹانس کھڑا کرتے جس کی بنیاد پہ شاید ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا یا رکاوٹیں انتظامیہ ہٹانے پہ مجبور ہوتی۔ تو یہ ایک بات چل رہی ہے۔ دوسری جانب پارٹی اس بات پہ صلاح مشورہ کر رہی ہے کہ اب آگے کا نئے عمل کیا اختیار کرے گی، کیونکہ ان کے پاس تین چیلنجز ہیں۔ ایک چیلنج تو یہ ہے کہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، 10 دن میں الیکشن ہے۔ دوسری طرف جو لیڈر ہے جس کی وجہ سے جو نون لیگ ہے اس کے لوگ جلسوں میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے ووٹ ڈالا جاتا ہے، وہ جیل کے اندر ہے، تو آپ عوام کو کس طریقے سے موبلائز کریں گے، کس طریقے سے الیکشن کا، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ کاروان چلایا جائے گا یا کوئی جیل کے باہر یا ایجیٹیشن جو الیکشن کے حوالے سے جو سوری ایجیٹیشن یا الیکشن کے حوالے سے جو مہم ہے اس کے اندر اس ایلیمنٹ کو بھی ایڈ کیا جائے کہ نواز شریف جیل میں ہے، ان کو باہر نکالا جائے۔
نواز شریف کے جیل میں جانے کے بعد ان کی پارٹی میں کس طرح کی ہلچل مچی ہے، جانکاری دے رہے تھے بی بی سی اردو کے سنواداتا طاہر عمران۔
75 ورشوں سے آپ کے ساتھ
بی بی سی ہندی ریڈیو،
سنیے اپنے موبائل پر
اور آن لائن بھی۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت میں بھی اتر پردیش کا۔ پوروانچل کے 2 دن کے دورے پر پہنچے پردھان منتری نریندر مودی نے کل اعظم گڑھ اور وارانسی میں کئی پریوجناؤں کا شلانیاس کیا اور بہت سی گھوشنائیں بھی کیں، لیکن پوروانچل ایکسپریس وے پر راجنیتی تیز ہو گئی ہے۔ وہیں پردھان منتری نے کل راہل گاندھی پر جو ٹپنی کی تھی اس پر کانگریس نے بھی تیکھا حملہ بولا ہے۔ سنیے اتر پردیش کے اعظم گڑھ سے سمیراتمج مشر کی یہ رپورٹ۔
لکھنؤ سے غازی پور تک بننے والے ایکسپریس وے کا شلانیاس پردھان منتری نے اعظم گڑھ میں ریموٹ سے کیا۔ سماجوادی پارٹی اس پریوجنا کا شرے لینے کے لیے پردھان منتری اور بی جے پی کو کوس رہی تھی، تو بلیا تک اس کی دوری گھٹانے کے لیے سرکار کا ویرودھ ہو رہا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے آروپوں کا جواب مکھیہ منتری یوگی نے ضرور دیا، لیکن پردھان منتری نے اس پریوجنا کو صرف وکاس سے جوڑا۔
آج اتر پردیش کے وکاس میں ایک نیا ادھیائے جڑنے کی شروعات ہوئی ہے۔ پوروی اتر پردیش کے ایک بڑے کھیتر میں وکاس کی ایک نئی گنگا بہے گی۔
پردھان منتری دوپہر کے قریب 3 بجے اعظم گڑھ میں اس پریوجنا کا شلانیاس کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وارانسی میں بھی جن سبھا کو سمبودھت کیا۔ اعظم گڑھ میں تو وہ پہلی بار گئے تھے، لیکن پردھان منتری بننے کے بعد وارانسی کا یہ ان کا 13واں دورہ تھا۔ وارانسی کے لیے انہوں نے قریب 1,000 کروڑ روپے کی 33 پریوجناؤں کی گھوشنا کی۔ وہیں لکھنؤ میں سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیش یادو نے ایک بار پھر پریس کانفرنس کر کے پوروانچل ایکسپریس وے کے دوبارہ شلانیاس پر سوال اٹھایا۔
ہمیں تو تعجب اس بات کا آتا ہے کہ ہم دوسرے کی چیز کا اگر ادگھاٹن کریں تو شاید ہمارے من میں اتنا سنکوچ ہوگا، شاید ہم نہ فیس کر پائیں آپ کو، لیکن بھگوان نے کتنی ہمت دی ان لوگوں کو، کتنا ساہس دیا ان کو कि दूसरे की चीज को भी अपना ले और बिल्कुल चेहरे पे एक शिकन नहीं दिखाई देती है।
आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के शिलान्यास करने की वजह राजनीतिक बताया जा रहा था और उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के इस क्षेत्र में उन पर या उनकी पार्टी पर हमलावर होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हुए।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है?
प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने सख्त एतराज जताया और काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी बोली,
इतने खिसियाए हुए हमारे प्रधानमंत्री हो गए हैं कि वो फेक न्यूज स्टोरीज के आधार पे और उसकी बुनियाद पे विपक्षी दलों पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। महिलाओं पे जो घटनाएं हो रही हैं वो बढ़ती जा रही है, तो पुरुष प्रधान पार्टी कौन सी हुई, जरा अपना आत्मचिंतन करें और जरा अपने जमीर में भी झांक कर देखें।
प्रधानमंत्री आज मिर्जापुर में बाणसागर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 39 साल पुरानी इस परियोजना पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इससे मिर्जापुर और इलाहाबाद के करीब 2 लाख किसान लाभान्वित होंगे। समीर आत्मज मिश्र, BBC आजमगढ़।
और अब अखबारों की समीक्षा, क्या खास है आज अखबारों में?
जी आदर्श, इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर एक खबर दिख रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक कानून में देरी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस से उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस मुस्लिम पुरुषों की ही पार्टी है, और उन्होंने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है।
जी, तो इसी बात को लेकर जो कांग्रेस ने भी पलटवार भी किया है।
जी जी, और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है कि बच्चा चोरी की अफवाह ने एक और जान ले ली है। कर्नाटक के जिले में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पीट पीट कर हत्या कर दी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
जी,
और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में ही एक साइड में खबर दिख रही है जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने स्कूलों के करीब 1.5 लाख बच्चों को फ्री हेयर कट देने की योजना बनाई है। इसके अलावा फुटबॉल विश्व कप का आज फाइनल है, इसकी खबर बहुत सारे अखबारों में दिख रही है फोटो समेत। और मंदिर में गैंगरेप के बाद एक महिला को जिंदा जला दिया गया यूपी में, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया।
उत्तर प्रदेश में कहां से, इसमें चलिए आगे क्या है?
उसके अलावा मध्य प्रदेश में बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी,
जी
ये खबर है। और दिसंबर में शुरू हो सकती है बुलेट ट्रेन, ये रेल मंत्री ने कहा है। इसके अलावा राज्यसभा में जो मनोनीत किया गया है जिन लोगों को, उससे जुड़ी खबर भी जनसत्ता में दिख रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह, रघुनाथ महापात्र और राम सकल सिंह को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने इन 4 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया है।
जी,
इसके अलावा
जी एक और खबर जिसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, ये पॉट होल स्किल 3600 इन 2017, ये बता रहा है कि जो सड़कों में गड्ढे हैं उससे 2017 में 3600 लोगों की मौत हुई है। ये संडे टाइम्स यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे टाइम्स में पहले पन्ने पर ये खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। और अब सुनिए उर्दू प्रेस रिव्यू जिसे तैयार किया है हमारे सहयोगी इकबाल अहमद ने और सुना रहे हैं हमारे सहयोगी अमरेश द्विवेदी।
पाकिस्तान से छपने वाले अखबारों में इस हफ्ते जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो थी नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और फिर उनकी गिरफ्तारी। पिछले शुक्रवार को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिया था। फैसला सुनाते वक्त नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ लंदन में थे जहां नवाज शरीफ की बीमार पत्नी का इलाज चल रहा है। अदालती फैसले के बाद सबकी निगाहें इसी पर टिकी थीं कि वो पाकिस्तान लौट कर आएंगे या नहीं, लेकिन उनकी बेटी मरियम नवाज ने यह बयान देकर सारी अटकलों को विराम लगा दिया था कि नवाज शरीफ शुक्रवार को पाकिस्तान लौटेंगे। मरियम की सैलान के बाद सबकी निगाहें 13 तारीख पर टिकी थीं। आखिरकार नवाज शरीफ और मरियम नवाज तयशुदा कार्यक्रम के तहत 13 जुलाई को लाहौर पहुंचे। उनको हवाई अड्डे से ही गिरफ्तार कर अडियाला जेल भेज दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ के समर्थन में लाहौर में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। مسلم لیگ کے ایک نیتا رانا ثنا نے کہہ دیا کہ نواز شریف کے سواگت کے لیے ایئرپورٹ جانا حج سے بھی بڑا ثواب ہے۔ شہباز شریف نے سمرتھکوں کی ریلی کو سمبودھت بھی کیا۔ شہباز شریف اس سمے پاکستان مسلم لیگ نون کے ادھیکش ہیں اور نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اخبار دنیا شہباز شریف کے حوالے سے لکھتا ہے کہ عوام کا سمندر سڑکوں پر آیا، اتنی بڑی ریلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اخبار ایکسپریس لکھتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے پاکستان لوٹنے سے ان کی پارٹی کے کارکرتاؤں کو نیا آکسیجن مل گیا ہے۔ اخبار کے مطابق مسلم لیگ کارکرتاؤں سے کیسے نپٹا جائے اس کو لے کر پنجاب پرانت کے انترم سرکار اور وہاں کے نوکر شاہوں میں بھاری مت بھید تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پرمخ عمران خان نے نواز شریف پر نشانہ سادھا۔ اخبار دنیا کے مطابق عمران خان نے نواز شریف پر حملہ کرتے ہوئے کہا، مجرم اعظم آ گئے ہیں، اب لوٹے گئے 300 ارب روپے بھی واپس کر دیں۔ عمران خان آگے بولتے ہیں، چناؤں میں جیت کا پکا یقین ہے، میچ ابھی ختم نہیں ہوا، آخری بال تک ہوگا، تبدیلی آ گئی ہے، جو رہ گئی ہے وہ 25 جولائی کو آ جائے گی۔
سنسنی نہیں، وشوسنیتا کا دم،
BBC ہندی۔
2 سال پہلے ریو اولمپک میں جمناسٹکس میں بھارت کا پرتنیدھتو کر چکی دیپا کرمکار نے حال ہی میں ترکی میں ورلڈ چیلنج کپ میں گولڈ میڈل جیتا۔ جمناسٹک اسپردھا میں بھارت کی امید مانے جانے والی دیپا بی بی سی نیوز میکرز میں ہماری سہیوگی اندو پانڈے سے روبرو ہوئیں۔ سنیے اپنے پردرشن کو لے کر دیپا کا کیا کہنا تھا۔
دیکھیے، میں تو اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی، جو میرا ہے وہی مجھے کرنا ہے، ابھی میڈل جو بھی ملے، گولڈ، سلور، برونز، بٹ اس دن میرا اچھا رہا، اسکور بھی ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس کارن گولڈ آیا، اور سب چیز ایکسپیرئنس اچھا تھا، کیونکہ میں 2 سال فیلڈ سے باہر تھی، انجری تھا، تو اس کے بعد میں آئی فیلڈ میں، تو اب اچھا تھا ہمارے لیے، کیونکہ بہت دن کے بعد ایک کمپٹیشن ایکسپوجر بھی ملا مجھے کچھ کرنے کا، تو مجھے بھی میں بہت خوش ہوں۔
اور ہم نے ان سے ان کی چوٹ کی وجہ پوچھی، تب انہوں نے کیا کہا؟
دیکھیے، تکلیف تو ہر ایک چیز میں دی، میں میرے اس چوٹ کی وجہ سے بہت سارے کمپٹیشن بھی چھوٹ گئے، ایشین چیمپئن شپ، ورلڈ چیمپئن شپ، لاسٹ کامن گیمس بھی، تو ہاں وہ سب بہت مشکل تھا، بٹ دیکھیے چوٹ اگر لگ گئی تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی اس کو ٹائم دے کے صحیح کرنا امپورٹینٹ ہے، تو ویسا ہی تھا میرے۔
ترکی میں ہوئے ورلڈ چیلنج کپ میں واپسی کرتے ہوئے دیپا نے گولڈ میڈل جیتا، اور کسی بھی ورلڈ ٹورنامنٹ میں گولڈ میڈل جیتنے والی اس طرح سے وہ بنی پہلی بھارتی جمناسٹ۔ ریو اولمپک کے بعد دیپا کو چوٹ لگ گئی تھی اور اس کے بعد ان کی سرجری ہوئی، لیکن آج بھی ریو اولمپک کو یاد کرتے ہوئے وہ یہی کہتی ہیں۔
دیکھیے، اس وقت کو وہ چلا جاتے، اس کو کچھ بتا نہیں سکتے نا، کیونکہ ابھی جو گیا گیا، ابھی جو سامنے اس کی، مجھے لگتا ہے وہی چیز کو فوکس کرنا، ابھی ریو چلا گیا، میں اس کو واپس نہیں لا سکتی، نہ میں وہ پھر دوبارہ کر سکتی ہوں، نہ میڈل لا سکتی، تو بس ابھی جو سامنے اس کی فوکس کرنا چاہیے۔
تو دیپا نے ایک پہچان دلائی اس کھیل کو۔
بالکل، پورے انڈیا کو جمناسٹکس کی پہچان ہو چکی، ابھی جمناسٹکس کسی کو نہیں لگتی کہ سرکے سے، سب کو لگتی کہ وہ شاید جمناسٹکس ابھی سب پاپولر ہو گئے انڈیا میں بہت۔
لیکن پھر بھی ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ان فیوچر میں اور کون ہے جس کو ہم اس کھیل سے جان سکتے ہیں؟
دیکھیے، ابھی تو ہمارے ساتھ کی بہت ہے، جیسے آپ کو پتا ہوگا لاسٹ ورلڈ کپ میں ایک میڈل جیتا تھا ارونا ریڈی، وہ ہے، اور بھی پرنتی داس ہے، نائک، ابھی ہے 4-5 اور سینئر، بعد میں جونیئر سے آ رہے، وہ سب دیکھیے، وہ تو ابھی میں کیا بولوں، وہ شاید کوچز جو ہے وہاں پہ وہ بول پائیں گے کون ہے، کیا ہے، کیا ہوگا۔
لیکن جب تک ان کے کوچ نندی کا ذکر نہ ہو تب تک بات ادھوری رہتی ہے، تو دیپا کیا کہتی ہیں آپ؟
ہاں بابی، دیکھیے میرا اتنا انجری تھا، اس کے بعد سر بہت موٹیویشن دیا مجھے، پھر میرے جو فیزیو ہے وہ جو مجھے سرجری کیا تھا، ڈاکٹر آنند جوشی سر، ان کی مطلب ان سب کی بہت مدد تھی، میرے ساتھ میں جو اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا اور جمناسٹکس فیڈریشن آف انڈیا اور ہماری اسٹیٹ، مطلب ان کے بنا سپورٹ کی شاید بہت مشکل تھی، کیونکہ ایس سی ایل کے بعد ایسے آنا بہت مشکل ہے، اور میری جو گوشت پوسٹ فاؤنڈیشن، ان کی بھی بہت مدد تھی ہماری۔
اور اگلے مہینے ہونے والے ایشیائی کھیلوں میں 10 سدسیہ بھارتی جمناسٹک ٹیم میں دیپا کو شامل کیا گیا ہے۔
ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ بھی نیکسٹ ایئر سے وہ اولمپک کوالیفیکیشن بھی شروع ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہ بھی اس کے ساتھ شروع ہوگا، تو ابھی ہے نیکسٹ ایئر بھی ہے۔ دیکھیے جمناسٹکس میں اتنے بھی کمپٹیشن نہیں ہے کہ 2-3 ہفتے کے بیچ ہوتے ہیں، تھکان نہیں، بس ہم کوشش کرتے کہ وہ سب کرے اور اچھا کرو
کمپٹیشن۔ آپ سن رہے تھے بھارتی جمناسٹ دیپا کرمکار سے ہماری بات چیت۔ روس میں جاری فیفا وشو کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں آج فرانس اور کروشیا کے بیچ فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا۔ फ्रांस दूसरी बार और क्रोएशिया पहली बार चैंपियन बनने की कोशिश करेगा। लेकिन इस महामुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने फुटबॉल समीक्षक नोवी कपाड़िया से बातचीत की।
फाइनल कभी आसान नहीं होता और क्रोएशिया के लिए वो उनके सारे खिलाड़ी जानते हैं कि जो तीन मैच लगातार वो एक्स्ट्रा टाइम में खेले तो 30-30-30 तीन मैच कम से कम एक मैच ज्यादा खेले, लेकिन उनमें हिम्मत उत्साह इतना ज्यादा है तो ये लुका मॉड्रिच की टीम को कभी भी आसानी से हार नहीं मानने वाले। जो टीम आक्रमण ज्यादा बना पाएगी और अपने जो मौके मिलते उनका फायदा उठा पाएगी वो फाइनल जीतेगी, क्योंकि मौके बहुत कम मिलने वाले। दोनों का डिफेंस बहुत लाजवाब है, फ्रांस का तो खैर बहुत ही शानदार है, पिछले दो मैच में उन्होंने एक गोल भी नहीं कंसीड किया। फ्रांस पे गति ज्यादा है और क्रोएशिया की रणनीति और टेक्निकल मिडफील्ड, तो मिडफील्ड का युद्ध है ये, तो कौन जीतता है। पोग्बा, नगोलो कांते, ब्लाइज मतूदी मिडफील्ड में गति से खेलते और तेज गति से आक्रमण करते, और क्रोएशिया जो बड़ी रणनीति से खेलते मिडफील्ड में रैकेटिच, रेबिच, पेरिसिच, मॉड्रिच। खैर अच्छी बात है कि दोनों फुल टीम होगी, दोनों की कोई ऐसे मिसिंग नहीं है जैसे सेमीफाइनल में बेल्जियम के पास थॉमस मुनिया नहीं था, तो पूरे सब लोग फिट है और सब खेलेंगे, तो एक शानदार फाइनल होना चाहिए। और इतिहास भी है इसमें क्योंकि 20 साल पहले क्रोएशिया हारे थे सेमीफाइनल में 1-2 फ्रांस के साथ, इनके यूरो 2004 में भी मैचों में कुछ विवाद हुए, तो क्रोएशिया में मेरे ख्याल से इच्छा ज्यादा होगी थोड़ी सी।
कोई और खास बात इस मुकाबले की जिस पर एक एक्सपर्ट के तौर पर आपकी नजर रहेगी?
एम्बापे की जो गति है वो क्रोएशिया कैसे रोक पाएगी, क्योंकि एम्बापे की गति ने अर्जेंटीना का, जैसे ओतोमेंदी एक मैनचेस्टर सिटी के लाजवाब डिफेंडर थे लेकिन बिल्कुल उन्हें एक मामूली खिलाड़ी बना दिया। यूरोग्वे का गोदें और जिमेनेस का कहते थे कि वो सबसे शक्तिशाली डिफेंसिव पैर है, एम्बापे की गति और जो ग्रीजमैन फटाफट पासेज निकालती है। क्रोएशिया ने भी शुरू में जब इंग्लैंड रहीम स्टर्लिंग और हैरी केन ने गति से आक्रमण किया तो क्रोएशिया काफी बैकफुट पे थे पहले आधे घंटे, तो काफी क्रोएशिया को मुश्किल पड़ा था, उसमें इंग्लैंड 2 गोल कर लेते तो वो शायद मैच इस समय इंग्लैंड का फाइनल होता फ्रांस से। तो ये गति का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से फ्रांस 60-40 पसंदीदा टीम है इस फाइनल के लिए।
अब सुनिए और क्या हो रहा है खेल की दुनिया में।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल इस विश्व कप की छुपी रुस्तम मानी जा रही बेल्जियम की टीम ने इंग्लैंड को 2-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। बेल्जियम के थॉमस म्यूलियर ने खेल के 4th मिनट में ही गोल कर दिया। इसके बाद खेल के 82वें मिनट में हेजार्ड ने गोल कर बेल्जियम को 2-0 की अजय बढ़त दिला दी, लेकिन क्रिकेट के मैदान में इंग्लैंड ने बाजी अपने नाम की और कल लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 86 रन से करारी मात दी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रूट की 113 रनों की शतकीय पारी की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 322 रन बनाए। भारत के कुलदीप यादव ने 68 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके बाद जीत के लिए 323 रनों की तलाश में उतरी पूरी भारतीय टीम 50 ओवर में 236 रनों पर सिमट गई। हार के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने खुले दिल से इंग्लैंड के खेल को सराहा।
We expect a side like England to bounce back. So credit to them, they had a really good day today. They played some really good cricket collectively in all three disciplines and they deserve to win.
लेकिन बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत की पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। कल खेले गए सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मरिस्का तुंजुंग को 23-21, 21-16, 21-9 से हराया। वहीं आखिरकार विंबलडन को महिला एकल वर्ग में नई चैंपियन मिल ही गई। कल 11वीं वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने विंबलडन फाइनल में 7 बार की चैंपियन अमेरिका की सेरेना विलियम्स को 6-3, 6-3 से हराया। कल ही पुरुष एकल वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल भी पूरा हुआ। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल को 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8 से हराया। जोकोविच का सामना आज फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन से होगा।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया मीना कोटवाल ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें, नमस्कार।